उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आज पहला अध्याय है। पहले तो टाइटल हमको ठीक तरह से समझ लेना है। गीता में आप सबको पता होगा कि 18 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द लगा हुआ है, योग। तो गीता में जो योग शब्द लिखा हुआ है उसका एक ही मतलब है। संसार में हम योग शब्द के कई अर्थ निकालते हैं। योग यानी प्राप्त करना या जुड़ना, जैसे धन का योग हुआ, लड़के का योग हुआ, लड़की का योग हुआ। अगर लड़का नहीं हो रहा है, लड़कियां हैं सब घर में, लड़के का जन्म हुआ तो लड़के का योग हुआ। लेकिन यहाँ पर गीता में जो योग शब्द जुड़ा हुआ है उसमें एक ही अर्थ निकलता है कि उस अध्याय में उस विषय की प्रधानता है, उस विषय का महत्व है और उस साधन के द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अब आप योग, अगर भगवान ने कहा होता कि सांख्य योग दूसरा अध्याय अगर पहले रख दिया होता तो हमको तो ज्ञान है ही नहीं, अध्यात्म ज्ञान तो हमें है ही नहीं। तो अध्यात्म ज्ञान पहले लेना पड़ेगा, फिर भगवान के साथ योग होगा। लेकिन पहला ही अध्याय देखो कितना बढ़िया अध्याय है कि विषाद है, जो विषाद के द्वारा भगवान का योग अर्जुन को हुआ। तो विषाद का अनुभव तो सबको है ना? सभी इंसान को कुछ न कुछ विषाद तो जीवन में आते ही है, चाहे बाहर से हम कहें कि नहीं हम बहुत सुखी है, बहुत मजे में है, हाँ, लेकिन अंदर से, ये अंदर की बात है, तो अंदर से हमको कुछ न कुछ बात का शोक होता है। अगर कुछ नहीं रहा ना शोक, तो ये प्रकृति और माया ऐसी है कि हम खुद उत्पन्न कर देते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं शोक। हाँ, बहुत सब अच्छा होगा ना तो भी कुछ लगता है कि कुछ मजा नहीं है। हाँ, सब है, अगर सब हस्बैंड भी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, वाइफ भी इच्छा के अनुसार चल रही है, बहुत बनती है, घर भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, स्वजन भी अच्छे हैं, तो भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। ये अज्ञानता की निशानी है सबसे बड़ी। तो विषाद का अनुभव तो हम सबको है, सभी को है। तो ये 18 अध्याय में सभी, ये 18 साधन है, उपाय है। प्रत्येक अध्याय एक साधन है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति यानी शांति और आनंद को प्राप्त करते। भगवान यानी शांति और आनंद, सुख, सनातन सुख है? तो उसकी प्राप्ति हम, ये कोई भी एक अध्याय अगर आपको गीता में से पसंद आए तो वो आपके लिए आपका साधन बन जाएगा। तो देखो अभी तो अर्जुन को विषाद हुआ है, विषाद की वजह से भगवान का योग हुआ उसे। अगर विषाद नहीं होता, सुखी सुख होता, तो हो सकता है कि भगवान का योग नहीं होता। तो विषाद, विषाद यानी शोक, दुख है। यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको विषाद नहीं हुआ हो या शोक नहीं हुआ हो कभी जीवन में? बिल्कुल सही बात कही है आपने। रोज होता है और दिन में कितनी बार होता है, लेकिन हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। हमको इसलिए नहीं होती है कि हम भगवान के पास जाते ही नहीं है। बहुत सरल बात है, ऐसी बात नहीं है कि भगवान के पास कोटा है, वीसा है कि भाई हम इतने ही देने वाले हैं, इतने ही भक्त तो मेरे पास आ सकते हैं, बस आज का दिन खत्म, फिर कल आना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम खुद भगवान के पास जाते नहीं है। अगर हमें विषाद हुआ और भगवान याद आ गए तो बात बन गई, लेकिन हमें विषाद आया तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? हाँ, अच्छा, लड़कियों को तो माँ बाप याद आते हैं, अब भाई लोगों को कौन याद आता है? बहन याद आती है। सुषमा तो आज है नहीं। बहन याद आती है। सेम बात है, कोई ऐसा नहीं है, यू नो, दोनों को बात दो, दोनों को याद आती है कि देखो हमारी बहन है, तो उनको बहन का, उनको अपनी माँ का भी लगता है, माँ बाप याद आते हैं।
बैंक,
ओ आई एम सॉरी, ये तो बहुत गलत बात हो गई। बैंक और बहन में बड़ा फर्क है, जरा जोर से बोला करो ताकि मैं सुन लिया करूँ ठीक तरह से। बैंक, चलो सही बात तो बोली, ऑनेस्टी भी बड़ा अच्छा गुण है, रियली बहुत अच्छा। ये अभी तो मैंने लास्ट टाइम जो तुम्हें कुछ कहा था कि भाई ये हम क्या योग्यता मांगते हैं इसमें, उसमें तो पहले मैं ऑब्जर्व करूंगी कि वो उसका पालन हो रहा है या नहीं। खाली गीता नहीं करने का है, क्योंकि नहीं तो आपने गीता तो पहले बहुत की है, सुनी भी है, पढ़ी भी है, चर्चा भी की है, लेकिन रियली हमको गीता में से लाभ लेना हो तो जितना भी हम यहाँ सुनते हैं थोड़ा बहुत, 1% भी थोड़ा प्रयत्न करो उसको उतारने का। तो योग्यता की जो बात होती है वो तो अभी बाद में थोड़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भगवान की नियम और योग्यता को देखे जाएंगे, लेकिन विषाद होता है तो बैंक बैलेंस या बैंक की याद आती, क्यों? कि हमको लगता है धन से हमको सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, लड़कियों को भी पेरेंट्स क्यों याद आते हैं? अगर पेरेंट्स दुख दे तो उनको पेरेंट्स याद आएंगे? कभी नहीं आएंगे। अगर पेरेंट्स का स्वभाव कुछ अच्छा ऐसा रहा कि बहुत नियम में रहना रहे, कड़क हो, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं रही, तो पेरेंट्स भी याद नहीं आएंगे। तो शॉर्ट में ये है कि जो तुमको सुख देता है वो विषाद में तुमको याद आता है। जो तुमको सुख देता है, अगर भाई देता है, बैंक देता है, माँ देती है, भाई देता है, मित्र देते हैं, बॉस तुम्हारा अच्छा है वहां पर, हाँ, ऑफिस में, तो जो भी तुमको सुख की प्राप्ति कराता है उसकी याद तुमको आती है। भगवान की याद नहीं आती है, क्योंकि भगवान के विषय में हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। अगर हमको भगवान की याद आ गई तो हमारा काम बन गया। लेकिन आपको डेफिनेटली भगवान की याद आई है और आपको पता भी नहीं है। अगर भगवान की याद नहीं आती तो आप यहाँ आते ही नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि जब जीवन में विषाद आता है तब हम रियली भगवान को याद करते हैं, और करेंगे तो रियली हमको भी भगवान का योग होने वाला है, जैसे अर्जुन को भगवान का योग हो गया, हमको भी भगवान का योग होने वाला है। तो विषाद का अनुभव तो हम सबको है, सभी को है, किसी न किसी प्रकार का विषाद हमारे मन में है। विषाद का मतलब है कि हम को कुछ कमी सी महसूस लगती है। जब विषाद होता है तो क्या होता है? विषाद का वर्णन करना का सरल नहीं है। विषाद में हमेशा हमको किसी बात की कमी लगती है, और एक्चुअली वो कमी क्या है पता है? क्या क्या कमी है? जब विषाद होता है, क्रोध भी होता है, इच्छा के अनुसार भी नहीं होता है, तो विषाद में कमी लगती है। किस बात की कमी लगती है? कभी अनुभव नहीं हुआ आपको? ये है ना, महाभारत का युद्ध का उदाहरण है, इतना ही याद रखना है। ये हमारी ही कहानी है, हमारे ये संसारी हमारे लिए धर्म युद्ध है, हमारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है, और ये कुरु नाम का जो फैमिली है वो हमारा ही फैमिली है। तो ये तो खाली दृष्टांत ही लिया गया है, लेकिन ये कहानी हमारी है, प्रत्येक साधक की है, हम सब अर्जुन है। तो विषाद होता है तो किस बात की कमी लगती है हमको? अच्छा, स्वजन होते हैं साथ में तो भी विषाद आता है, तब किसकी कमी लगती है? अच्छा, स्वजन दूर है, अभी वीर है, तब अच्छा लगता है। जैसे ही स्वजन पास में आ गए तो विषाद तो चला गया, फिर दूसरा विषाद आता है, कमी कमी लेकिन कमी नहीं लगती है कुछ बात की? सीमा,
इट्स बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर फुल लव,
प्रेम आया, प्रेम की कमी लग रही है। अगर स्वजन भी आ गए लेकिन अगर प्रेम सच्ची नहीं मिला तो विषाद चालू रहने वाला है, लेकिन विषाद का रूप बदल गया, विषाद का रूप बदलते रहता है। हाँ, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं माया में। तो विषाद तो रहता ही है, जब तक तुम सच्चा प्यार भगवान का प्राप्त नहीं करोगे तब तक विषाद किसी न किसी रूप को धारण करके हमारे सामने आने वाला है, चाहे वो धन का रूप हो, चाहे प्रेम किसी और इन स्वजनों का हो, या बच्चों का दुख हो, कोई ना कोई दुख हमको विषाद करा ही देगा। तो जब तक, क्योंकि स्वजनों का अगर दुख लगता है, विषाद होता है, तो डेफिनेटली जब स्वजन आते हैं तो विषाद तो चले जाना चाहिए। लेकिन कभी विषाद गया? एक समय तो था जब हम सब साथ में थे तब भी विषाद था, दूर हुए तो थोड़ा हम फिर हमको एक बहाना सा मिल जाता है, क्या कि भाई स्वजन नहीं है। जब धन नहीं होता है तो मिलता लगता है कि धन आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, धन भी आया सुखी हुए। 1 करोड़ रहा तो लगता है 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ आया, अभी अभी जब 2 करोड़ नहीं है ना तो लगता है कि नहीं 2 करोड़ में तो मुझे संतोष हो जाएगा, लेकिन जब 2 करोड़ आएगा तो लगता है ये तो मजा नहीं आया, क्योंकि जो चीज नहीं है ना उसमें तुमको सुख देखने की आदत पड़ गई है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसमें सुख देखने की एक आदत सी पड़ गई है, जो रियली गलत है, जो रियली अज्ञानता है, और जिसकी वजह से हम रियली भगवान ने देखो हमें कितनी कितना अच्छा सब कुछ दिया है, लेकिन जो दिया है उसका कभी हम आनंद भोग ही नहीं पाते हैं। जो क्या नहीं दिया है, अच्छा घर है, यू नो स्वजन है, बच्चे हैं, कंफर्ट्स है, मित्र है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है उसकी वैल्यू नहीं है, और उसको हम ठीक तरह से उसके पास से हम लाभ नहीं ले सकते, और जो नहीं है उसकी कल्पना करते जा रहे हैं, और वो कल्पना में हमको सुख दिखाई देता है। होता है कि नहीं? हाँ, इंडिया जाना हो तो लगता है कि अरे हम इंडिया जाएंगे वहां पर मजा करेंगे, इंडिया जाके देखा क्या हाल हुआ, फिर बोलते अरे नहीं अब अमेरिका जाके तो बड़ा यहाँ पता लग गया, यहाँ तो क्या प्रॉब्लम है, वहां तो सुखी सुखी, वहां जाके आनंद करेंगे, फिर यहाँ आएंगे ना तो इंडिया की बात करेंगे। देखो ये माया कैसे हमको धोखी, और ये उदाहरण सब जगह होता है। ऑफिस में जाते हैं तो चलो घर जाके जल्दी काम करके आराम करेंगे, घर आते हैं तो लड़ाई करते हैं। तो जो रियली हम कितनी आश्चर्य की बात है कि अज्ञानता की वजह से हम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमारा विषय चालू ही रहने वाला है, विषय जाने ही वाला नहीं है, क्योंकि हम गलत जगह पर हेल्प के लिए जा रहे हैं। सो देखो 18 अध्याय में 18 विषय है, साधन है, उपाय है, और केवल 700 श्लोक ही है। अभी तक तो आपने काफी बुक्स पढ़ी होगी, अभ्यास किया होगा, कितना समय उसमें डाला होगा, तो कम से कम ये अगर अभी ये मत चिंता करो कि भाई 18 अध्याय कब पूरे होने वाले हैं, ये सोचो कि 1 श्लोक भी अगर गीता का तुमने ठीक तरह से समझ लिया तो गीता सारी समझ में आ जाएगी। और पहला ही श्लोक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग पहला अध्याय करते नहीं है, दूसरे अध्याय से शुरू कर देते हैं। पहला अध्याय तो भूमि का है शुरू, यू नो उसको अगर ठीक तरह से नहीं समझा तो दूसरा अध्याय तो आने वाला नहीं है। अगर हमने ABCD नहीं सिक्योर्ड, हम कहेंगे हमको सेंटेंस ही लिखाते यू नो सिखा दो, तो क्या होगा? लिख सकोगे आप? नहीं, कभी नहीं लिख पाएंगे। तो ये टाइटल का अर्थ ठीक तरह से समझ लो कि हमको विषाद होने वाला है, हमको विषाद हुआ है, हमको विषाद हो रहा है, क्या किया, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। तो विषाद के द्वारा हमको भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के साथ जुड़ जाना है। जब विषाद आए ना तो थोड़ा सोचना है कि भाई ये विषाद किस कारण से हमें हुआ। तो धीरे धीरे गीता का जब अभ्यास करने लगोगे तो अपने आप उसमें से उपाय मिलने लगेगा। अभी तो हमने गीता सुनी नहीं तो उपाय भी एकदम से तो समझ में नहीं आएगा कि विषाद क्या है। जैसे झगड़ा हुआ तो अभी तक तो हमने काफी यू नो देखा है क्रोध आ गया तो विषाद आ गया। तो कोई ये सोचो कि भाई हमने तो सुना है कि क्रोध तो हमको ही नुकसान करता है, उससे लाभ तो होने वाला नहीं है, बुद्धि हमारी ढक जाती है, तो क्रोध तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो अब चलो हम अब सोचेंगे। तो ये जब जो सोचना है ना वो भगवान के विषय में सोचना है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण सोचो तो ही सोचा जाता है। जब हम सत के विषय में सोचते हैं तो भगवान के विषय में सोचते हैं, क्योंकि सत ही भगवान है, भगवान ही सत है। तो ऐसा जब हमें हमारा प्रॉब्लम आएगा हम उसके लिए थोड़ा उपाय सोचेंगे, और उसको फिर उपाय को क्या करना है, जीवन में उतारना है, तब कहीं हमको भगवान का योग होने वाला है। फिर चलो अभी इसका उच्चारण करेंगे पहले श्लोक का, और फिर पहला श्लोक की कमेंट्री करेंगे। प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योगः पूरी गीता में धृतराष्ट्र एक ही बार बोलते हैं हा? और एक पहला उनका ही श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम् अपूर्वत संजय अपने अच्छा भाषांतर लिख लो मुझे लगता है भाषांतर लिखना चाहोगे ना अच्छा यहाँ पर धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं हे संजय धर्म क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और मेरे और पांडु के पुत्र ने या पांडु के पुत्रों ने क्या किया ये शायद मैंने पहले मेंशन किया होगा कि गीता के मुख्य तीन विभाग किए गए हैं जिसमें पहला ही विषय है 1 से 6 अध्याय कर्मयोग के विषय में प्रधानता है 1 से 6 अध्याय में कर्म लेकिन ये कर्म जो हम समझते हैं वो कर्म नहीं है कर्म नहीं बदलना है कर्म तो वही रहेंगे लेकिन कर्म करने का तरीका कर्म के पीछे क्या भाव होना चाहिए उसका विषय है तो 1 से 6 में भगवान हमको कर्म करो और उसके फल का त्याग करो ये मुख्य विषय है अगर इतना याद रहा तो 6 श्लोक का सारांश याद रहेगा हमको कर्म करो लेकिन उसके फल का त्याग करना है और वो तभी हो सकेगा जब हम डिटेच होके कर्म करेंगे या हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो पहला गीता का तो विषय ये है इसके लिए अभी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो भी जैसे जैसे गीता करेंगे आपके समझ में आ जाएगा फिर दूसरा विषय है 7 से 12 भक्ति योग 7 से 12 अध्याय में भगवान ने भक्ति किसको कहते हैं उस विषय में चर्चा की है 7 से 12 और 13 से 18 अध्याय में ज्ञान की बात हुई है हाँ? कि ज्ञान किसको कहते हैं हम जो कॉलेज में पढ़े हैं धन ज्यादा कमाते हैं धन इकट्ठे करने का जिनके पास धन है उनको कहते हैं कि हम इनके बड़े ज्ञानी हैं या जिनको चर्चा करने आती है उसको हम कहते हैं कि बड़े ज्ञानी हैं लेकिन भगवान की दृष्टि से ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों शब्द के अर्थ बिल्कुल अलग है हमने अभी तक कर्म ज्ञान और भक्ति का रियल अर्थ समझा ही नहीं है अगर रियल अर्थ समझ लेते तो हमारे सभी दुखों का अंत आ जाता हमने कर्म को समझा लेकिन कैसे समझा आधा ही समझा पूरी तरह से नहीं समझा हमने कर्म तो किया लेकिन फल का त्याग नहीं किया कर्म तो किया लेकिन स्वार्थ से किया तो भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन भाव कैसे रखो निस्वार्थ क्योंकि स्वार्थ की भावना रखोगे तो हम दुखी हो जाएंगे हा? हम प्रेम कर, फिर भक्ति के विषय में भगवान कहते हैं सभी को प्रेम करो, सभी को समान प्रेम करो, और प्रेम के बदले में प्रेम की आशा मत रखो। ये भक्ति का विषय है। हम प्रेम करते हैं लेकिन सौदा करते हैं, तुम हमको प्रेम नहीं करोगे, तुम हमको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, हम भी नहीं बुलाएंगे, आप हमको गिफ्ट दोगे $2 की तो हम $1 की देंगे। हाँ, तो हर बात में हस्बैंड के साथ भी सौदा करते हैं, बच्चों के साथ भी सौदा करते हैं, हम अपने साथ भी सौदा करते हैं। तो सौदा ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति यानी प्रेम और मोह का भेद जान लो, कर्म में स्वार्थ और निस्वार्थ कर्म को ठीक तरह से जान लो। ठीक है, ये तो थोड़ा जस्ट ऊपर ऊपर की व्याख्या देती हूँ ताकि आपको पता चले कि गीता में मुख्य तीन विषय हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो ज्ञान, अंत में ज्ञान की बात हुई है, तो ज्ञान में हमको लगता है कि ज्ञान की हमको पता ही नहीं है कि ज्ञान, ज्ञानी किसको कहेंगे, जिसको सत और असत का भेद पता है और उस भेद के अनुसार जिन्होंने अपना जीवन किया है उनको हम ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञान की पहली ही भाषा भगवान ने ये कह दी थी, अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम यानी जो अपने को बड़ा नहीं मानता है, जो ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तो मान लेना उसके जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। ये भगवान ने व्याख्या दी है, अमानित्वम माने जो अपने आप को, जो अपने आप को यू नो रियली नम्र मानेगा, उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कि वो खुद नम्र है। इतनी बढ़िया भाषा, बढ़िया परिभाषा है ये ज्ञानी की। तो ज्ञान उसको नहीं कहते हैं कि दूसरों को चर्चा में हरा दो, हाँ दूसरे तुम्हारी भाषा से इम्प्रेस हो जाए कि अरे अरे क्या बड़े बड़े शब्द यूज किए थे, क्या बोलने की छटा थी, क्या शैली थी, ये सब अध्यात्म की बात नहीं है, ज्ञान की भाषा नहीं है। अभिमान नहीं हो दूसरों को अमानित, तो अदम्भ नहीं है जिनके जीवन में, हाँ कहते कुछ है करते कुछ है। तो ये ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिभाषा हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन गीता के मुख्य तीन विषय आपको याद होना चाहिए। 6-6 अध्याय का एक एक विषय है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तीनों समझ में आया? कोई प्रश्न है इसमें? अगर मैं आगे जाऊं समझ में नहीं आया तो मुझे रोकना। अच्छा, इसमें अभी हमने भाषांतर तो लिख लिया, आप सबको धृतराष्ट्र के विषय में तो पता होगा ना, महाभारत तो देखा है सबने, तो उसके विषय में हम ज्यादा अभी वो स्टोरी की बात नहीं करेंगे। हाँ, धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र का अध्यात्म अर्थ तो समझ लेना चाहिए कि जो धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे थे। तो यहाँ आंखों की, जो आंखों का अंधापन होता है उसकी बात नहीं की है, बुद्धि से जो अंधा है, मन से जो अंधा है, हृदय से जो अंधा है, वो अंधेपने की बात है। तो आंख होकर भी अगर हमने धृतराष्ट्र की तरह जीवन जिया तो हम अंधे हैं। अगर धृतराष्ट्र मोहित है, देखो दुर्योधन कैसा गलत गलत मांगता है उनके पास, तो भी उन्होंने मोह की वजह से क्या किया, अंधे ही रहे, कुछ रोका नहीं उन्होंने। और पत्नी भी देखो कितनी मोहित थी, ये मोह की निशानी, सबसे बड़ी मोह की निशानी अगर महाभारत में है तो गांधारी है। और लोग गांधारी को पूछते हैं कि क्या पतिव्रता थी, और पति को तो बहुत बढ़िया लगती है वो पतिव्रता, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी पत्नी भी पतिव्रता बने। तो ये पतिव्रता नहीं है, पतिव्रता वो है जो पति को गलत रास्ते से बचाकर सीधे रास्ते पर ले जाए। वो तो उसने क्या किया, पट्टी बांध ली, दोनों भी अंधे हो गए, एक तो अंधा था ही, दूसरा भी अंधा जानबूझ के हो गया। तो देखो अकल की कहां कोई हद नहीं होती है, कि भाई कैसा बुद्धि का उपयोग करना था। भगवान ने अगर उसको अंधा बनाना होता तो जन्म से ही बनाया होता धृतराष्ट्र की तरह से। तो दृष्टिहीन का मतलब है कि तुम्हारे में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और शायद हो सकता है कि तुम्हारे में विवेक हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, तो अगर उसके अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है तो भी अंधे हैं। बुद्धि, ज्ञान और विवेक हो सकता है, लेकिन अगर उसके अनुसार हमने जीवन नहीं किया तो भी हम अंधे हैं। क्योंकि अंधे का मतलब क्या है, अंधा क्या, अंधे का जीवन कैसा होता है, कदम कदम पर ठोकर खाते हैं ना, अंधे होते हैं तो बेचारे क्या खाते, कदम कदम पर ठोकर खाते हैं। तो हमारी अगर आंख है, बुद्धि भी है, देखते भी हैं, तो भी हम कदम कदम पर ठोकर खाने वाले हैं, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि का सदुपयोग नहीं किया। तो धृतराष्ट्र का मतलब है कि जिनको अनेक गलत वासनाएं हैं, वासना गलत नहीं है, वासना अच्छी भी हो सकती है। देखो मेरी को जीसस के लिए कैसी वासना थी कि भाई मुझे मेरे गर्भ से भगवान का जन्म हो, तो ये भी एक शुभ वासना है। लेकिन यहाँ पर जो भी बात होती है गलत, जिसको कहते हैं, वो अशुभ वासना है, और अशुभ वासना मनुष्य को बहुत दुख देती है। तो जो गांधारी की और धृतराष्ट्र की जो वासनाएं थी, कहते ना 100 लड़के थे उनको, तो उनको 100 वासनाएं थी। 100 तो बहुत कम है, अनंत जिसको कहते हैं, कि जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। मनुष्य को भी अनंत ही वासना होती है। देखो हर व्यक्ति को अनंत वासना होती है। एक वासना पूरी हुई नहीं है, अभी लग रहा है कि ये वासना पूरी होने में है, तुरंत ही दूसरी आके खड़ी हो जाएगी। तो जब तक गलत वासनाओं का अंत नहीं आएगा, हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि वासना हमको सुख नहीं देती है, इच्छाएं हमको सुखी नहीं करती है। दौड़ने से और ज्यादा एक्टिविटी करने से हमको सुख नहीं मिलने वाला है। तुम चाहे कितनी भी दौड़ क्यों नहीं लगाओ, धन के पीछे, नेम एंड फेम के पीछे, या किसी और क्षणिक ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो धर्म क्षेत्र को ठीक तरह से समझ लो। पहले दो अर्थ है धर्म क्षेत्र, जहां पर क्षेत्र यानी जगह, जहां पर शुभ कर्म किया जाए, अच्छे कर्म किया जाए, पुण्य कर्म किया जाए, वहां पर उसको धर्म की जगह कहते हैं। तो ये संसार, हमारा शरीर धर्म की जगह है, जहां पर धर्म रहता है। ये शरीर ही हमारा धर्म क्षेत्र है, जहां पर सत रहते हैं, जहां पर भगवान रहते हैं, और जहां पर शांति रहती है। और धर्म का एक दूसरा मतलब है कि क्या होता है धर्म, यानी क्या, तुम्हारे पास से पहले जान लो, आप धर्म यानी क्या समझते हो? हाँ, ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य, भगवान ने प्राप्ति, धर्म मार्ग, राइट, ठीक है, नीति नो मार्ग, बिल्कुल। धर्म यानी स्वभाव, एक अर्थ धर्म का ये होता है कि धर्म यानी स्वभाव। दूसरा अर्थ ये होता है धर्म यानी कुदरत के नियम। कुदरत हिंदी शब्द है ना, तो कुदरत के नियम यानी सृष्टि के नियम। तो धर्म यानी सृष्टि के नियम को ठीक तरह से समझना, उसी को हम कहेंगे कि हमने धर्म का पालन किया। और सृष्टि के नियम किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए। तो ये बात नहीं है कि गीता में ही खाली भगवान के नियम बताए हैं और उपाय बताए हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता नहीं थी, फिर भी ये नियम सृष्टि में समाये हुए थे। हाँ, अगर हमें विवेक होता तो सारी सृष्टि में ये गीता के नियम छुपे हुए हैं। अगर हमारे में शुद्ध दृष्टि हो, पवित्र दृष्टि हो, तो उस नियम को हम जान कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि के नियम ही धर्म है। जैसे दिन और रात, ये एक नियम है, उसको कोई बदल सकता है? और ये नियम ऐसे हैं, कोई भी बदल नहीं पाएगा। भगवान के नियम की परिभाषा ये है कि कोई भी काल में, कोई भी देश में, किसी भी व्यक्ति के लिए बदलेगा नहीं। सभी के लिए सत है, सभी के लिए जो असत है वो असत ही रहेगा। चाहे कोई भी देश के कोने में चले जाओ, कोई भी भाषा बोलो, चाहे धनवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, और चाहे कोई भी काल हो, सतयुग हो या कलयुग हो, भगवान के नियम कभी भी बदलने वाले नहीं है। हा? तो ये सृष्टि के जो नियम है, दिन और रात है, तो ये नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का ही फल देने वाला है, ये भगवान का नियम है। बारिश होती है ये सब भगवान के नियम के अनुसार सारी सृष्टि चल रही है। तो भगवान ने जो नियम सृष्टि में रखे हैं, वो नियम भगवान ने हमारे में भी रखे हुए हैं। ये शरीर के अंदर ही है, जिसको जानकर हमको भगवान की प्राप्ति करना है। यानी कुदरत के नियम, धर्म यानी स्वभाव। आम का पेड़ कभी दूसरा फल नहीं दे पाएगा, और नीम का पेड़ होगा वो कभी फल नहीं दे पाएगा, वो नीम का ही। तो दोनों की आवश्यकता है। वैसे पशु का स्वभाव अलग है, नदी का स्वभाव अलग है, पहाड़ का स्वभाव अलग है, ऋतु का स्वभाव अलग है, उनका मतलब वो धर्म है। नदी का धर्म क्या है? बहना। झाड़ का फल स्वभाव क्या है? फल देना। तो ये सृष्टि में हरेक का अपना अपना स्वभाव होता है, और हरेक व्यक्ति, पशु पक्षी, कुदरत में जड़ और चेतन सभी भगवान के नियम के अनुसार चल रहे हैं, और वो इसलिए सुखी है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है। कर्तव्य में क्या होता है कि नदी को कुछ करना नहीं पड़ता है, और मनुष्य को एक एबिलिटी भगवान ने ये दी है कि उसको चॉइस है। सी, नदी को तुम रोक नहीं पाओगे। अभी आजकल तो वो रोकते हैं, लेकिन वो भगवान के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए नदी को रोका, दैट मीन्स भगवान का नियम तोड़ा, और इसलिए ये सब दुखाने वाला है। जो अभी है ना, धीरे 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 मैंने देखा सब, हाँ, हमारे ऋषि मुनि ने जो कहा ना, वहीं पर आने वाले हैं। अभी ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, पानी शुद्ध नहीं है, ये बिल्डिंग बांध रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, बीमारी फैल रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुदरत के जो नियम थे, झाड़ था तो उसको वहां से काटना नहीं था हमारे स्वास्थ्य के लिए, हा? नदी बह रही थी तो उसमें हमने गंदगी नहीं डालना था। अगर हमने गंदगी डाली तो भगवान के नियम को तोड़ दिया। तो नदी में तो, नदी तो स्वच्छ थी ही, उसमें गंदगी डालना बंद कर दो तो नदी तो स्वच्छ ही थी स्वभाव से। तो हमने नदी को वहां पर चॉइस, वो भगवान के नियम के आगे है। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य के लिए हम कर्तव्य कह सकते हैं, लेकिन नदी का तो वो स्वभाव ही है। वैसे मनुष्य का भाई स्वभाव है, और स्वभाव को हम कर्तव्य कहें, लेकिन जब हम कर्तव्य कहते हैं तो थोड़ा नीचे आ जाता है, स्वभाव अपने आप हो जाता है। स्वभाव और कर्तव्य दो में थोड़ा सा शुक्र भेद है, जो आगे जाके हम देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि नदी का स्वभाव क्या है, बहना। हाँ, ये सब का स्वभाव हमने तो कभी इतनी ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन अगर ठीक तरह से सोचो तो अगर एक भी वस्तु का स्वभाव हमारे समझ में आ गया ना, तो हमारा स्वभाव हमको समझ में आ जाएगा। नदी का ठीक तरह से स्वभाव समझो, पेड़ का ठीक तरह से स्वभाव समझो, सूर्य का समझो। सूर्य देखो अपना कर्तव्य स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य कर रहे हैं, और अब मनुष्य की तरह हम अपना कर्तव्य कर, तो फिर हम कर्तव्य में आते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या किया, नदी को तो स्वतंत्रता नहीं दी, तुमको तो बहना ही क्योंकि जड़ है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता भी दी और बुद्धि भी दी। तो अगर तुम कहोगे कि हमें नरक में जाना है, तो भगवान कहते ठीक है, नरक में जाओ, थोड़ा दुखी होगे, फिर तुमको पता लगेगा कि ये तुमने गलत किया है, तो तुम उसमें से सीख के वापस आ जाओगे। और अगर तुम ये चाहो कि हमें स्वर्ग में जाना है, तो तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता भी दी और साथ में जिम्मेदारी भी दी, दोनों भी दिया हम। तो अगर हमको सुखी होना है तो भगवान के नियम का पालन करना है, सुखी नहीं होना है तो कर्तव्य का पालन नहीं करो। लेकिन हमको गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि हमको कर्तव्य सच्चा पता ही नहीं है, सच्चा कर्तव्य क्या है यही हमें पता नहीं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमको रियल हमारा स्वभाव क्या है यही पता नहीं है। अगर हमको जैसे नदी का स्वभाव पता चल गया, पेड़ का स्वभाव पता चल गया, वैसे मनुष्य का भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है मनुष्य का, क्या धर्म है, क्या स्वभाव है? प्रेम स्वभाव है मनुष्य का, और जो स्वभाव होता है ना, उसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। नदी का स्वभाव बहना है, नदी रुक नहीं सकती है। हाँ, तो पेड़ का स्वभाव है छाया देना, उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, वो स्वभाव है, बिल्ट इन है। वैसे हमारा स्वभाव हमको पता नहीं है, हमने वासना को, स्वार्थ को, मोह को, हाँ, इसको हमने अपना स्वभाव मान लिया है। प्रेम को हमने स्वभाव नहीं माना, निस्वार्थ भावना को हमने स्वभाव नहीं माना। दूसरों को जब हम कुछ देते हैं तो हम थोड़ा पैसे का हिसाब कर लेते हैं, लेकिन जब स्वजनों को देते हैं कभी सोचते ही नहीं। अपने बेटे को देना होता है तो 5 क्या 50 भी दे दो तो सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर पराए गरीब को देना है तो सोचेंगे अरे ये गरीब है इसको क्या जरूरत है अभी। हाँ, तो देखो भेद आ गया, स्वार्थ आ गया, मोह आ गया, ममता आ गई। तो हमको रियली स्वभाव, और भगवान इसलिए फिर क्या करते हैं, सुखी नहीं होने देते हमको, क्योंकि हमने भेदभाव किया। हमने हमको भगवान ने जो स्वभाव दिया उस स्वभाव के अनुसार हम रहे नहीं, हमने भेदभाव कर लिया, अपने को प्रेम किया, दूसरों को तिरस्कार किया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि रियली मनुष्य की तरह तुम्हारा ये स्वभाव है कि तुम समान भाव से प्रेम करो। और समान भाव से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई सांप को भी तुम घर में लाके बैठा दो और कहो कि भाई समान प्रेम कहाँ है, तो हम सबको घर में रखेंगे, कुत्ते को भी घर में रखो, बिल्ली को भी घर में रखो। समान प्रेम का मतलब यह है कि मन में सबके लिए समान भावना, और बाहर से जो वर्ताव करोगे ना, क्योंकि समान वर्ताव करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी व्यवहार में। कुत्ते को घर में रखोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गंदा हो जाएगा घर, और वो कुत्ते का स्वभाव नहीं है घर में रहने का, सोफा पर बैठने का, कार में बैठने का। नहीं वो है ही नहीं, तुमने गलत समझा, तुमने उसको उसका स्वभाव डाल दिया, थोप दिया। जैसे तुमने अभी मोह को प्रेम कह दिया ना, वैसे कुत्ते के स्वभाव को कह दिया कि उसको सोफा अच्छा लगता है। अरे उसको तो अच्छा ही लगेगा ना, उसको जैसे आदत डालोगे बिचारों के वैसे वो करेगा। लेकिन अगर उसको बाहर छोड़ दो तो वो सोफे में आता है, वो भागेगा दूर। अगर उसको रियली स्वतंत्रता दी जाए कुत्ते को, वो बैठा नहीं रहेगा घर, ये दरवाजा खुला छोड़ो तो वो जाता है कि नहीं बाहर। लेकिन अगर तुमने ट्रेन किया है उसको मार मार के, खाना नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, पनिशमेंट, तो उसको बिचारी को वो उस तरह से ट्रेन हो गया है। लेकिन कुत्ते का स्वभाव नहीं, लोग तो कुत्ते के साथ खाते भी है, उसका जूठा खाते हैं। देखो जूठा खाते हैं, और फिर वो बाल घर में जहाँ कुत्ते रहते हैं ना वहां सारे घर में, ये तो अरे मनुष्य को प्रेम नहीं करते इसलिए कुत्ता ले आए हो। बात तो ये है, बात यह है कि प्रेम कुत्ते को भी करो लेकिन दूर से करो। प्रेम मनुष्य को कितना चाहिए, दुनिया में कितने लोग दुखी है, कितने लोग कितने, अरे घर के लोगों को ही प्रेम की जरूरत है सबसे पहले। तो घर के लोगों को प्रेम नहीं करते, कुत्ते बिल्ली ले आते हैं उसको प्रेम करते हैं, उसके पास से कुछ। कुत्ते को भी प्रेम थोड़ी है, सिक्योरिटी चाहिए, अकेलापन लगता है, प्रेम, सुनता नहीं है तो कुत्ते को बोलेंगे तो सुनेगा, हस्बैंड थोड़ी सुनता है कुछ। तो सुनने के लिए ये अमेरिकन लोग भी सुनते नहीं है ना, ये लोगों का वही तो पद्धति है। अपने वहां भी कुत्ते रखते थे, ऐसे थोड़ी है। हमारे वहां तो कितनी अच्छी पद्धति थी कि कुत्ते के लिए रोटी सबसे पहले बनती थी। तो पशु में भी भगवान देखना है, समान भावना। ओके, बिल्ली के लिए भी हम दूध देते थे, वो चींटी के लिए भी आटा डालते थे, तो उसका क्या, सांप की भी पूजा करते थे, तो क्या मतलब था कि सब में भगवान को देखो, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर रखकर, बेडरूम में लाके या सोफे में लाकर नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कुदरत के नियम को तोड़ रहे हो, और फिर प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं, और फिर उसमें सॉल्यूशन में लग जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं, उसमें सारा जीवन चले जाता है। आनंद तो करते नहीं हो, शांति तो करते नहीं हो, प्रेम तो करते नहीं हो। लगता है 2 करोड़ आएंगे तो पत्नी को खुश करूंगा डायमंड की रिंग देकर। अरे डायमंड की रिंग आएगी नहीं आएगी, मर जाएंगे पता नहीं है तुमको। प्रेम करो, प्रेम की आवश्यकता है सबको, भले ही कोई बोले नहीं ना। मन पुरुष होता है, अभिमान की वजह से बोलते नहीं कि मुझे प्रेम करो, स्त्री बड़बड़ करती है कि प्रेम नहीं करते। इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। नहीं भाई बोलते नहीं है, लेकिन भगवान ने रखा है, ये स्वभाव है हमारा, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। भले ही तुम अहंकार की वजह से बोलो कि मुझे किसी की पड़ी नहीं है, यू नो, तुम्हारे बिना हमारा अच्छी गाड़ी चलती है। कभी पुरुष बोलेंगे नहीं स्त्री को कि तुम्हारे बिना हमारी गाड़ी अटक पड़ी थी, क्योंकि फिर अहंकार आ जाएगा ना बीच में, हम तुमको मिस करते हैं, ये तो बोला ही कैसा जाएगा। लेकिन आज अभी आजकल थोड़ा जनरेशन सुधर रहा है, तो थोड़ा ऑनेस्टी कम से कम बोलते हैं बच्चे लोग कि भाई यू नो हम मिस करते हैं ये वो। लेकिन कुछ साल पहले तो यही तरीका था कि पुरुष तो बोल ही नहीं सके, कितनी गलत मान्यता है। पुरुष कभी रो नहीं सकेगा, पुरुष कभी सच्चा यू नो बोल नहीं सकेगा। पत्नी को कहा कि मिस करता है तो माँ को बुरा लगता है, माँ को कहा कि भाई हम मिस करते हैं तो पत्नी को बुरा लगता है। क्या गड़बड़ कर दी, तो स्वभाव ही नहीं जाना है कि अरे पत्नी को भी प्रेम चाहिए जिसको हम दूसरे घर में से उठा कर ले आए हैं। माँ ने जन्म दिया है तो माँ को पहला अधिकार है। दोनों को समान भावना से रखो, पत्नी की जगह पत्नी को दो, माँ की जगह माँ को दो, बच्चों की जगह बच्चों को दो। ये हमारा स्वभाव है, और ये स्वभाव के अनुसार तुम चल नहीं रहे हो, और वो दुख की बात है। हमारा रियली स्वभाव एक ही है, प्रेम करो, स्वार्थ नहीं रखो। और प्रेम का दूसरा अर्थ है निस्वार्थ। दूसरा जो पहलू है ना, हाँ, एक ही सिक्के की दो बाजू है। जहां प्रेम होगा वहां निस्वार्थ भाव होगा ही। जहां निस्वार्थ भाव होगा तो तुम प्रेम की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव में प्रेम समाया हुआ है। स्वार्थ है वहां मोह है, मोह और साथ साथ में जाता है, प्रेम और निस्वार्थ भावना साथ में जाता है। तो बस करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। हमारा मनुष्य का जो एक ही स्वभाव है, देने की भावना रखो, लेने की भावना नहीं रखो। क्योंकि जब लेने की भावना हम नहीं रखते है ना, तो भगवान को चिंता हो जाती है कि अरे ये तो सारा लुटा रहा है, अब इसकी कौन चिंता करेगा, अब तो मुझे चिंता करनी है। ये मेरे नियम का पालन कर रहा है, भले ही भगवान में तुम मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जब भगवान के नियम का पालन तुम कर रहे हो तो भगवान को चिंता करनी ही पड़ेगी। मीरा ने अपनी चिंता कभी की नहीं, तो भगवान को दौड़ दौड़ के आना पड़ा और जहर पीना पड़ा। लेकिन हम तो बचाव करते हैं, नहीं भाई नहीं, ये जहर तो राणा ने भेजा है, हम पियेंगे ही नहीं। तो फिर तुम अपने आप कर लो अपनी जिम्मेदारी। तो जब कुदरत का नियम का पालन करेंगे तो रियली हमको कोई चिंता नहीं है। तो धर्म में अभी इतना ही अर्थ जान लो। धर्म का बहुत विशाल अर्थ है। धर्म क्षेत्र यानी जहां पर शुभ कर्म होते हैं, सृष्टि के नियम के अनुसार कर्म होते हैं, और ये सारा संसार हमारे लिए एक क्षेत्र है जहां पर हमें धर्म का पालन करना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी कुरु नाम का फैमिली थी, तो हमारी नाम ही बदल गया, फैमिली हमारी भी है, वो कुरु फैमिली थे, हम कौन से, आपका लास्ट नेम क्या है, गुप्ता, गुप्ता फैमिली कर लो, अग्रवाल फैमिली कर लो, पटेल फैमिली कर लो, जो कुछ भी हमारी, ये हमारा फैमिली है। और फैमिली होती है वहां पर क्या होता है, झगड़ा होता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हर फैमिली में झगड़ा होने वाला है, ये भगवान ने नहीं ऐसा बनाया है, फिर भगवान को ब्लेम नहीं करना। लेकिन भगवान ने ये कहा कि जब तुम कुदरत के नियम को नहीं पहचानोगे तो फैमिली के साथ ही तो तुम रहते हो। हाँ, फैमिली का मतलब ये नहीं है कि तुमने उन बच्चों को जन्म दिया है। फैमिली का मतलब ये है, चाहे अमेरिकन ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर तुमने उसको अपना मान लिया, वो तुम्हारे लिए फैमिली बन गई। फैमिली का मतलब ऐसा थोड़ा है कि ब्लड से जुड़े हुए होना चाहिए, मनुष्य जाति है बस, हो गई बात खत्म। फैमिली का मतलब है कि जो भी लोग हम साथ में रहते हैं, जुड़े हुए हैं, कुटुंब की तरह रहते हैं, वो वहां पर युद्ध होने ही वाला है। क्यों युद्ध होने वाला है, दो कुटुंब में, फैमिली में क्यों युद्ध होते हैं, स्वार्थ होता है, ईर्ष्या, स्वार्थ होता है, ईर्ष्या होती है, और सबसे बड़ा अज्ञानता होती है, कि ज्ञान ही नहीं है। अरे हम अपने भाई से जब छोटे थे तो कितना शेयर करके सब खाते थे। हाँ, भाई बहन जब छोटे छोटे होते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि थोड़ी कोई चीजें रही तो बांट के खाते थे। अभी वही भाई और बहन पैसे के लिए झगड़ा करेंगे। तुमने अगर पिताजी की कोई मिलकत रही ना, तो उसमें दोनों भी भाई बहन झगड़ा करेंगे। कहाँ गया, वो तो छोटे थे अच्छे थे तुम, अब बड़े हो गए तो अकल ज्यादा आनी चाहिए थी, और क्या आना, बड़े हो गए और अकल भी गई, छोटे थे तो अकल थी। तो ये गलत हो रहा है। तो हमको ज्ञान नहीं है कि देखो पहले उदार थे तो कितने खुश थे, अभी संकुचित हो गए तो दुखी हो गए। तो अज्ञानता की वजह से ये घर में युद्ध हो रहा है, फैमिली में युद्ध हो रहा है, और अंत में अगर सोचा जाए, फैमिली को भी छोड़ दो, कुटुंब को भी छोड़ दो, व्यवहार को भी छोड़ दो, तुम्हारे अंदर, तुम फैमिली को तो छोड़ सकते हो, कुटुंब को भी छोड़ सकते हो, लेकिन तुम कहाँ जाओगे। हाँ, हमारे अंदर, हमारे अंतकरण में सतत निरंतर युद्ध हो रहा है। और वो लड़ाई क्या है, सत और असत, कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है,